शांति, ओम शांति। आज बाबा कहे, बच्चे ज्ञान है डांस। बाबा ज्ञान को डांस कहते हैं। डांस क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे कोई डांस करता है तो उसको नशा चढ़ता है ना, बहुत नशा चढ़ता है। ऐसे डांस करेगा तो मजा नहीं आता है। डांस करने वाले को भी नशा होता है और डांस देखने वाले को भी नशा होता है। डांस देखते हैं ना, फिर वंस मोर भी करते हैं। उसमें गीत होता है, संगीत होता है, बहुत कुछ होता है। तो ज्ञान डांस है, मना उसमें नशा है। और योग क्या है? योग है एकदम साइलेंस। और साइलेंस का भी एक्सट्रीम, एकदम ऊंच चोटी है डेड साइलेंस। आत्मा एकदम अशरीरी बन जाए, देह के भान से एकदम न्यारी हो जाए। तो योग है डेड साइलेंस और ज्ञान है डांस। वैसे भी गीता जब कहते तो गीता शब्द कहां से निकला? गीत से निकला है, ज्ञान के गीत। और उसी को नाम दिया है गीता। तो भगवान भी आकर के गीत भी गाते हैं, डांस भी करते हैं। और फिर बाबा क्या कहते हैं, जब बाबा आते हैं तो कैसे बैठना चाहिए? इतने ही नशे से बैठना चाहिए और ज्ञान डांस देखनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं सामने बैठे और वो झुटका खाता रहे और बाबा की मुरली चले, तो ये तो बाबा की इंसल्ट है ना। भगवान महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं और बच्चे नींद कर रहे हैं, तो पार्वती की तरह हो जाएगा। तो अमरनाथ से सुन रहे हैं और नींद आ गई। इसलिए बाबा कहते हैं डांस माना रौनक और योग माना एकदम साइलेंस। दोनों का एक्सट्रीम एंड है लेकिन दोनों का सुंदर बैलेंस है। तो आज बाबा ने इस पर विशेष जोर दिया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और दूसरा, बाबा कहते हैं नशा भी कई प्रकार का होता है। तो कई बच्चों को ये नशा बहुत अच्छा चलता है, मुरली सुनते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। और कईयों को तो नशा ही नहीं चढ़ता है, समझ ही नहीं आता है। वैरायटी है। तो ज्ञान में, समझने में भी वैरायटी है, इसीलिए बाबा कहते हैं नंबरवार। तो नशा भी वैरायटी रूप में चढ़ता है, किसको तो बहुत ज्यादा चढ़ता है, किसको तो जैसे चढ़ता ही नहीं है, सुना न सुना सब बराबर। इसलिए बाबा कहते हैं नशा चढ़ाओ। और जब योग में बैठते हो एकदम डेड साइलेंस में चले जाओ। दूसरा, बाबा कहे तुम को इसलिए भी नशा होना चाहिए क्योंकि तुम इस समय भगवान के मददगार हो। अपने तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्पों से, शक्ति से बाबा को मदद कर रहे हो। तो बाबा का मददगार बनना ये कितनी बड़ी बात है, भगवान का मददगार बनना है। तो जो भगवान के मददगार बनते हैं उनको बहुत बड़ी प्राइज मिलती है ना। कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, सरकार के लिए भी करते हैं, तो सरकार उनको कितना इनाम देती है, कितना उनको बड़ा पद देती है, बहुत कुछ करती है। तो भगवान भी तुमको बहुत बड़ी प्राइज देते हैं, कौन सी? विश्व का मालिक बना देते हैं। तो उसका भी नशा बच्चों को हो, पर जो मददगार बनेंगे उनको ही नशा चढ़ेगा। बस आए, सुना, गए, नेमी नाथ, तो उनको थोड़ी नशा चढ़ेगा। तो आज बाबा ने उसके लिए भी नशा चढ़ाया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 6/4/2024 है। मीठे बच्चे, श्री मत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। श्री मत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। प्रश्न है, ज्ञान बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? बाबा कई बार कहते डांसिंग गर्ल हो, वो डांस करे और सामने वाले कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाए तो उसको भी नशा नहीं चढ़ता है। तो ज्ञान डांस बाबा की किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? उत्तर है, जो ज्ञान के शौकीन है। शौक है, हाँ बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, उस ज्ञान की गहराई में जाते हैं, पॉइंट्स की गहराई में जाते हैं। तो जो ज्ञान के शौकीन हैं, और दूसरा जिन्हें योग का नशा है, योग का भी नशा है, ज्ञान का भी नशा है, शौक है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबर वार स्टूडेंट्स है, सब स्टूडेंट्स नंबर वार है, परंतु ये वंडरफुल स्कूल है। क्या वंडर है स्कूल का, कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, भले क्लास में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, पर जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी है। नेमी ना तो थे ना, भावना है, जाना है क्लास में, जाना है क्लास में, वो ज्ञान का कुछ पॉइंट वो पड़ी बुद्धि में, नहीं पता नहीं, बस जाना है। तो सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी तो बन जाते हैं। बाबा कहते वो भी सही, वो भी ठीक, ऐसे नहीं कि सोए रहो और बाबा की मुरली चल रही है और सोए रहो, तो भावना भी नहीं है ना इसको कहेंगे। तो इसीलिए उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जरूर मिलेगा वर्षा, भले भावना ही सही। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। इस साल की थीम भी इसी अनुसार ही बननी है, स्पिरिचुअल विजडम कहो, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता से संबंधित कुछ बातें होगी। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है, और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। वो सब जो भी सुनाएंगे, या तो भक्ति सुनाएंगे या तो दुनिया की बातें सुनाएंगे। तो और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं है, रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है, विशेषता होती है ना, हर एक की स्पेशलिटी अपनी अपनी होती है। बैरिस्टर बैरिस्टर है, उसके अंदर वो खूबी है, कानून का ज्ञान है उसके पास। डॉक्टर डॉक्टर है, उसके पास डॉक्टरी का ज्ञान है, बीमारियों का, दवाइयों का ज्ञान है, तो उसकी वो स्पेशलिटी है, उसमें उसका वो हुनर है या उसकी खूबी है। हर एक की ड्यूटी और पार्ट अलग अलग है। अब भगवान की ड्यूटी पार्ट क्या है, इन सब बातों में बाबा नहीं जाते। बाबा से कई प्रश्न पूछते थे, किसी ने बाबा से पूछा, वेग बाबा से, बाबा मैं फलाने मेरे बेटे का दुकान खोलना है, तो मैं कौन सा समय करूँ, क्या कौन सा समय रखूँ, कौन सा मुहूर्त करूँ, कौन सा समय। बाबा ने कहा वो ज्योतिषियों से जाके पूछो, बाबा से ये थोड़ी पूछना होता है, बाबा उसके लिए थोड़ी बैठे हैं। बाबा तो कितना ऊंचा ज्ञान देते हैं जिससे विश्व ही बदल जाता है, वो बाबा से बातें कहो ना। अब मुहूर्त करना किसी दुकान का, उसके लिए बाबा से पूछेंगे क्या? तो बाबा कहते हैं हरेक की ड्यूटी, हरेक का पार्ट अलग अलग है, हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है, अपना पार्ट भी और वो अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना, गाते भी हैं, चमकता है भ्रकुटी के बीच में एक अजब सितारा। अब ये भी गाया जाता है कौन क्या कि निराकार आत्मा का ये शरीर है तख्त, भ्रकुटी के बीच में आत्मा चमक रही है तो शरीर तख्त हो गया आत्मा का, है वो छोटी सी बिंदी और सब आत्माएं एक्टर्स है, एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से। अब ये भी वंडर है, हर आत्मा के जितने वो जन्म लेती है एक जन्म के शरीर के फीचर न मिले दूसरे के शरीर से, और जितनी आत्माएं हैं सब आत्माओं के जो भी जन्म होंगे एक न मिले दूसरे से फीचर्स। तो देखो इसको ही तो बाबा कुदरत कहते हैं, एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, एक जन्म का पाठ न मिले दूसरे से, पिछले जन्म में क्या पाठ बजाया, इस जन्म में क्या पाठ बजा रहे हैं, किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे फिर फ्यूचर में क्या बनेंगे, किसी को भी पता नहीं कि पूर्व जन्म में हम क्या थे आगे के जन्म में क्या होंगे। कुछ कुछ कोई कोई बताते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो कोई बिरला कोई होगा जिसमें ये भी पार्ट होगा कि उसको पूर्व जन्म याद है, पर वो भी थोड़ा समय रहता है फिर भूल जाता है ना, क्योंकि आत्मा पर फिर दूसरे संस्कार चढ़ते हैं। तो किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे फिर फ्यूचर में क्या होंगे, ये बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं, हमारे 84 जन्मों की कहानी संगम पर बाप समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो, तो क्या होता है याद की यात्रा में बैठने से, जो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, बिल्कुल डल हो गई आत्मा की लौ वो फिर प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सोनार का भी काम करते हैं, पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती तो है ना, चांदी की खाद पड़ी आत्मा में तो त्रेता युग आया, तांबे की खाद पड़ी आत्मा में तो द्वापर युग आया, लोहे की खाद पड़ी तो कलयुग आया। तो बाबा कहते खाद पड़ती है ना, चांदी तांबा लोहा आदि नाम भी ऐसे है, गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज आयरन एज, सतो प्रधान सतो रजो तमो, ये बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही समझाएंगे कि कैसे आत्मा में खाद पड़ती है। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, अमृतसर में है एक अकाल तख्त, तो एक है स्वर्ण वो जो स्वर्ण मंदिर है वो तो गोल्डन टेम्पल, लेकिन उसके पास में सामने जो बिल्डिंग है उसको कहते हैं अकाल तख्त की बिल्डिंग, जिसमें भी ग्रंथ चलता ही रहता है, वो ग्रंथ ही सारा दिन ग्रंथ पढ़ते ही रहते हैं। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना, और वहां से कोई भी सिखों को फतवा जारी करनी है, कोई भी आदेश देना है अपने जाति धर्म वालों को, तो वहां बैठ करके देते हैं, क्योंकि उस स्थान का महत्व है। तो बाबा कहते हैं उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना, जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है, शिव बाबा को तख्त पर बैठकर ही ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, शिव बाबा कौन सा तख्त लेते हैं, ये दुनिया में कोई को पता नहीं है। तो कौन सा तख्त लेते हैं बाबा, हाँ, ब्रह्मा का तन, वो तो नेति नेति कहते आए हैं, हाँ नेति नहीं अंत नहीं अंत, नहीं जानते नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे, जो कुछ भी नहीं समझते हैं, हाँ जिनको कुछ भी समझ नहीं है तो उनको तो बेसमझ कहा जाता है। इस ज्ञान की समझ थी नहीं तो सब बेसमझ थे। भारतवासी समझते हैं, हम बहुत समझदार थे जरूर बहुत समझदार। विश्व का राज्य भाग्य हमारा था। अब बेसमझ बन पड़े तो बाप कहते हैं, तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो। अपने को बहुत समझदार समझा ना, अर्जुन ने भी यही समझा, मैं बहुत समझदार हूं। परंतु बाबा कहते हैं, ये सब अब भूल जाओ। तो अर्जुन ने बहुत समझदारी दिखाई, प्रश्न ही प्रश्न पूछता रहा, क्योंकि भगवान जो कहे उसको उसके उसका फिर प्रश्न। तो बाबा तो भगवान ने क्या कहा, ऐसा भूल जाओ, ये वेद शास्त्र आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। तो बाबा कहते ये सब अब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं, सारे थोड़ी उनके शिष्य सन्यासी बनते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं गुरु के साथ, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, इसको कहा जाता है, ये जो बाबा हमें समझाते हैं इसको क्या कहा जाता है, ज्ञान की डांस। ज्ञान की डांस, हाथ पैरों की डांस नहीं है, ये बुद्धि की डांस है, इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। ज्ञान की होती है डांस, योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, कोई जाप भी नहीं करना है, कोई माला भी नहीं फेरनी है, कुछ भी आवाज नहीं, बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं ना, डेड साइलेंस। कोई शरीर छोड़ता है तो उस समय एक सेकंड तो कम से कम डेड साइलेंस हो जाती है, और किसी के लिए मौन श्रद्धांजलि देते हैं तो उस समय भी क्या कहते हैं, एक मिनट साइलेंस। तो इसीलिए डेड साइलेंस, डेड साइलेंस कहते हैं ना, तीन मिनट डेड साइलेंस। परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं है। सन्यासी शांति के लिए तो जंगल में जाते हैं, और बाबा कहते हैं डेड साइलेंस तो कहां भी तुम कर सकते हो, अंदर चले जाओ, गुफा में चले जाओ अंतर्मुखी होकर। परंतु वहां थोड़ी शांति मिल सकती है जंगलों में। एक कहानी भी है ना, रानी का हार था गले में और ढूंढ रही थी गली गली में, कहां गले में है और कहां ढूंढ रही है गली में। ये मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वो दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये तो तुम समझ सकते हो, बाकी ये दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि तमो प्रधान पतित है क्योंकि सब विकारों से ही पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वॉइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं। परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं, भले कहेंगे वॉइसलेस वर्ल्ड निर्विकारी दुनिया ऐसे भी कहेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे विकार के बिना दुनिया कैसे चलेगी, तो फिर निर्विकारी दुनिया क्यों कहते हैं। परंतु उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो, बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे पूज्य सो पुजारी, बाप कभी पुजारी बनते नहीं है। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते हैं, तब बाबा कहते हैं कण कण में परमात्मा, कितनी बड़ी ग्लानी की है भगवान की। तब बाप कहते हैं भारत में जब ऐसी धर्म ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ, ये धर्म ग्लानी है कण कण में भगवान कहना। वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, वो समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है, आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा पर कोई लेपचेप नहीं चढ़ता, इसीलिए सब शरीर पर, इसलिए गंगा स्नान करो, सब पाप धुल जाएंगे। अब बाप कहते हैं पहले तो आत्मा पतित बनी है, शरीर तो बाद में पतित बना, पहले तो आत्मा पतित बनी है तब शरीर भी पतित बना है। सोने में ही खाद पड़ती है ना, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। तो शरीर जैसे हो गया जेवर और आत्मा है सोना, तो जैसा सोना होगा वैसा ही जेवर बनेगा। परंतु वो सब है भक्ति मार्ग में, हाँ, जो कहते आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा, आत्मा सो परमात्मा नहीं, तो जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पाठ बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस, ये फिर है ज्ञान डांस, मुरली है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उनों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाबा के आगे वही बैठेंगे, मुरली वही सुनेंगे जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना अपने स्टूडेंट्स को, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहां तहां बुलावा होता है, उनको बुलाते हैं आओ हमारे पास आके सेवा करो। तो अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहां तहां बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। ये स्कूल अथवा पाठशाला है, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं, समझ सकते हैं फलाना होशियार है, ये मीडियम है। यहाँ तो ये बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते, नंबरवार नहीं बिठा सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, पर बाबा उसको थोड़ी कहेंगे कि जाओ तुम पीछे बैठो, तुम्हारे में कोई ज्ञान नहीं, आगे बैठा है, चलो इंटरेस्ट है बैठा है आगे, तो बाबा किसको मना तो नहीं करेंगे। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है, भावना है इसलिए बैठे हैं, बाकी तो न ज्ञान है न याद है। इतना निश्चय है कि ये बाबा है इसलिए बैठते हैं। कई नए नए आते हैं, परंतु विशेष उनकी सेवा करनी होती है तो उनको कहेंगे ना भाई आगे बैठो, तो जरूर आगे बैठेंगे, भावना बैठे आगे बिठाते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट देना होता है। तो बाकी तो न ज्ञान है न याद है, इतना निश्चय है ये बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। अब वर्षा तो सबको मिलता है, सब बच्चों को मिलता है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। सेवा केवल ज्ञान देने की सेवा नहीं होती है, हर प्रकार की सेवा होती है, हर सेवा महान है, तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते हैं, जो राय देते हैं, हाँ दुनिया में तो पीस प्राइज देते हैं ना, अब जरा राय दी कैसे आपस में सुलह करो, उसको भी पीस प्राइज मिल जाती है। तो जो राय देते हैं माथा मारते हैं उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो, उस समय बहुत ये चल रहे थे कॉन्फ्रेंसेस, विश्व में शांति, क्योंकि बहुत टेंशन था ना, अमेरिका रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था, हथियार बनाने में दोनों देश होशियार बनाते जा रहे थे और एक दो को धमकी देते जा रहे थे, तो इसीलिए विश्व में शांति कैसे हो इस पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो, बाप ने कहा है उनसे पूछो, तो पूछो उनसे जो कह जो विश्व में शांति विश्व शांति सम्मेलन रखते उनसे पूछो, पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी, थी जो आप ये इतनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हो विश्व में शांति कैसे, पहले कभी थी, कभी सुनी व देखी है कि विश्व में शांति थी, किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी शांति, तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो, हाँ जवाब तो हम जानते हैं ना विश्व में शांति कब थी, क्योंकि तुम जानते हो कि विश्व में शांति कब थी, जो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे, प्रश्न पूछ रहा है टीचर और खुद टीचर कोई जवाब नहीं है तो वो क्या प्रश्न पूछेगा, तो हम जानते हैं इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व में कब शांति थी, तो जिनको खुद ही प्रश्न का जवाब नहीं आता उनको क्या कहेंगे, तुम अखबारों द्वारा भी पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो, शांति धाम तो है जहां आत्माओं को शांति है वो तो है, जहां हम सब आत्माएं रहती है, तो बाप कहते हैं एक तो अगर सच्ची शांति चाहिए एक तो शांति धाम को याद करो, वहां आपको शांति शांति मिलेगी, आत्मा एकदम डेड साइलेंस में है, कोई शरीर ही नहीं है, तो शांति धाम को याद करो, और दूसरा शांति चाहिए वो सुख के साथ, तो फिर सुख धाम को याद करो, क्योंकि वहां तो शांति के साथ सुख भी था, तो दोनों मिलेगी। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए, शांति हो कहते रहते, ये गपोड़े ही लगाते, पता ही नहीं है विश्व में शांति कब थी या कहाँ होती है शांति। तो सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए, तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं, नशा है ना, हम डबल सिरताज बनते हैं, हम देवता थे अब फिर मनुष्य बने हैं, देवता थे मनुष्य बने हैं, हाँ अब फिर तो बाबा कहे देवताओं को देवता कहा जाता है, उनको मनुष्य नहीं कहेंगे क्योंकि दैवी गुण है, क्योंकि दैवी गुण वाले हैं और मनुष्य माना जिनमें दैवी गुण नहीं है, दैवी गुण है तो देवता बन जाते हैं, जिनमें अवगुण है वो फिर कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, खुद ही कहते अपने आप को मैं निर्गुण हूँ मेरे में कोई गुण नहीं है। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वो सिर्फ गाते रहते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम बहुत गाते हैं, उसमें अच्युतम तो यीशु बाबा का नाम है, अच्युतम माना अविनाशी, जो कभी उसमें हलचल नहीं है, अविनाशी है अचल है, तो वो तो शिव बाबा की महिमा है, तो श्री कृष्ण की भी श्री राम की भी बहुत कुछ सब कुछ उसमें आता है। तो बाबा कहते हैं जैसे तोते को सिखलाया जाता है, कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ, आत्मा कहती है ब्रह्म लोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, तुम वहां आत्माएं हो रहती हो, वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया तो ये है, वो है शांति धाम। तो बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को नहीं जानते थे, शिव बाबा ने उनको उनके जन्मों की कहानी बताई है, ये भी अभी सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा भी अभी सुनते हैं तुम बच्चों के साथ साथ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है, जो नंबर वन पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है, उनको अपना रथ बनाता हूँ, भगवान किसको अपना रथ बनाता है, जो नंबर वन पावन था और वो नंबर वन पतित बनता है उनके उनको ही रथ बनाता हूँ, फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है, ब्रह्मा बाबा को इसलिए फर्स्ट में भी दिखाते तो लास्ट में भी दिखाते हैं। कल्प वृक्ष में नीचे भी दिखाया है, तपस्या करता हुआ फर्स्ट, फिर लास्ट एकदम लास्ट में खड़ा है कल्प वृक्ष के ऊपर। तो फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट फिर फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया है, ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। त्रिमूर्ति में लिखा है ना, शिव परमात्मा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते, मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ ऐसे नहीं कहते हैं, देवी देवता धर्म में आता हूँ। खुद भगवान देवता नहीं बनते हैं, खुद तो सदा ही भगवान है, पर देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। मैं देवी देवता धर्म में आता हूँ ऐसे नहीं कहा। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं, उनको देवता बनाते हैं, पर खुद नहीं बनते देवता, खुद तो है ही परमात्मा। विष्णु कोई और नहीं है, कौन है विष्णु? ब्रह्मा का भी परिचय दिया कि इनके द्वारा मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, फिर विष्णु का परिचय क्या है? विष्णु को भी कोई नहीं जानते हैं। हाँ, विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी को, विष्णु माना राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को। विष्णु कौन है ये भी कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का भी राज समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर ये बनते हैं, वही ब्रह्मा सो फिर श्री कृष्ण सो श्री नारायण बनते हैं, विष्णु बनते हैं, वो फिर ये बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है विष्णु, तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये ब्रह्मा सरस्वती फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें यानी ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ, तो ये ब्रह्मा भी सुनते हैं, ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं, ये ब्रह्मा फर्स्ट नंबर में ब्राह्मण है। फिर मम्मा, मम्मा देवियों को ब्राह्मणी भी कहते हैं ना, ब्राह्मणी माना ब्रह्मा की संतान, तो ब्रह्मा की पैदाइश, तो ब्राह्मणी भी कहते हैं। ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं, ये है ब्रह्मा बाबा को और क्या नाम देंगे, ये है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, पुत्रा पुत्री नहीं है पुत्रा है, तो मेल कहेंगे, तो ब्रह्मपुत्रा। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है, गंगा सागर कलकत्ता में है, वहाँ गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी वो दोनों मिलकर के सागर में मिल जाती है, तो वो बहुत बड़ा वहाँ मेला लगता है गंगा सागर पर। तो मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है, बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। और वहाँ ऐसा है, खास हम जब कलकत्ता गए थे तो देखने के लिए गए थे, नदी कौन सी है सागर कौन सा है पता ही नहीं चलता है, एक तरफ नदी है और वो सागर है, लेकिन और नदी सागर जहाँ मिलती है वो है स्थान, लेकिन इतना मिक्स हो गया है कि ये नदी है या सागर है ये पता ही नहीं चलता है, इतना मेल हो गया। तो बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। ये वो बनते हैं, क्या बनते हैं? विष्णु। इनको वो यानी ब्रह्मा सो विष्णु बनने में एक सेकंड लगता है, साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है। कैसे कहेंगे एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, विष्णु का साक्षात्कार हुआ बाबा को और फट से नशा चढ़ गया मैं ये बनता हूँ। तो बाबा कहते हैं झट निश्चय हो जाता है मैं ये बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो ये गधाई क्या करेंगे, इतने हीरे जवाहरातों का व्यापार ये सब क्या करेंगे, मैं तो विश्व की राजाई ले रहा हूँ, सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, ये दुनिया खत्म होने वाली है तो झट भागे। बाबा के आगे दादियां बैठी होगी ना, वो भी शुरू में ऐसे ही एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ करके भागी, क्योंकि यहाँ विश्व की राजाई मिलनी है, साक्षात्कार हुए उनको। तो बाबा कहते हैं, तुमको भी पहले मालूम हुआ कि बाबा आया हुआ है, ये दुनिया खत्म होने वाली है तो झट भागे। बहुत साक्षात्कार हुए विनाश के, स्वर्ग के, हाँ ये बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं झट भागे वो, हमारी दादियां भी तो उस समय कितनी बहादुर निकली होगी ना, कैसे सब भागी बाबा के पास। बाबा ने नहीं भगाया, बाबा ने उनको नहीं कहा, वो खुद अपनी इच्छा से भागे। हाँ बट्टी बननी थी इसलिए बाबा ने रोका भी नहीं, क्यों रोकेंगे, क्योंकि बट्टी तो बननी थी ना, बाबा को तो बच्चे चाहिए थे, वो नींव पढ़नी थी तो नींव तो पढ़ी। तो नींव में तो कितनी चीजें डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, किचरा भी पड़ जाता है ना नींव में, सब भरना होता है नींव को, तो सीमेंट भी डालेंगे, सोना भी डालेंगे, चांदी भी डालते हैं नींव में, बहुत कुछ। कई जगह जाते हैं ना फाउंडेशन डालने के लिए बुलाते हैं, तो उसमें सब धातु भी डालते हैं, सबको डालते हैं, और फिर मिट्टी विट्टी ऐसे इतना डाल देते हैं तो पूरा भरना होता है, खड्डा बना दिया, क्योंकि उसी से नींव बनती है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने नहीं भगाया, तो उस समय सब आ गए, कच्चे पक्के सब आ गए। तो बाबा ने सबकी सुरक्षा की, नहीं ऐसे थोड़ी कहा नहीं नहीं चले जाओ, ऐसे नहीं, फाउंडेशन तो पढ़ना था, लेकिन अभी बाबा ने अलाव करते, अभी घर ग्रस्त में रहो, अपने परिवार में रहो, ऐसे नहीं यहाँ आके बैठ जाओ। तो बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्टी बननी थी। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, भागवत में भी बहुत है, श्री कृष्ण ने भगाया, कैसे सत्यभामा को, रुक्मणी को, ये सबको भगाया। तो भगाया माना, हाँ बाबा कहते पटरानी बनाने लिए भगाया, पर ये भगाने की बात नहीं है। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना, तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तो बाबा पर कितने कलंक लगे कि ये अपने आप को श्री कृष्ण कहलाता है और इतने सब रानियां उसको मिली है, इनको भगाया अपने पास रख दिया है, और ये समझता है मैं तो श्री कृष्ण हूँ, और मुझे अभी ये तो 300 रानियां मिली है, मुझे तो 16108 रानियां चाहिए, क्योंकि यही है भागवत के अंदर ना 16108 रानियां। तो बाबा कहते हैं तो है तो ये ग्लानी की बात। तो बाबा कहते हैं तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, ये तो अच्छा है ना, पटरानी बना दिया सबको तो ये तो अच्छा है ना, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं है। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तब कलंगीधर बनते हैं। कल्कि अवतार भी अभी मान दे, अभी बहुत चारों ओर ये भी आवाज है, कलयुग का अंत है तो कल्कि अवतार कहाँ न कहाँ पैदा हुआ होगा, कल्कि अवतार आएगा सफेद घोड़े पर चढ़ करके अवतार लेगा। तो बाबा कहते कलंक तो ब्रह्मा बाबा पर बहुत लगे, सफेद वस्त्रधारी तो कलंक लगे, तभी कलंगीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, फिर कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, शिव बाबा पर भी कलंक लगते हैं। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कहा कि बाबा मैं तो कितना बड़ा व्यापारी था, जौहरी था, कितना मेरा मान था, दादा लखीराज बाबू ये नाम से सब समाज उनको जानता था, और जैसे शिव बाबा ने प्रवेशता की और बाबा का कार्य शुरू हुआ कितने कलंक लगे। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते थे बाबा इतने कलंक लग रहे हैं, तो शिव बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे, मुझे भी बहुत कलंक लगे हैं भक्ति मार्ग में, शिव बाबा पर भी बहुत कलंक लगे हैं, सर्वव्यापी कहना, कण कण में कहना, पत्थर भीतर में कहना, ये भी कलंक है। तो ब्रह्मा बाबा पर भी कलंक लगे, शिव बाबा पर भी कलंक लगाते हैं भक्ति में, कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी ग्लानी करते हैं। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, ये भी ग्लानी है भगवान की, कहा आत्मा पाप आत्मा, और उसको भी कहेंगे ये परमात्मा, तो परमात्मा सो हम आत्मा। अब ये ग्लानी हुई ना, तो बाप समझाते ऐसे तो है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल, इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं, राजा ही नहीं है, ब्राह्मणों का कुल होता है, तो इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे। डिनास्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, ये तुम्हारा कुल है। है बहुत सहज, हाँ ज्ञान बहुत सहज है। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? हाँ, कोई पीते होंगे तो बाबा ने सीधा कह दिया, सीढ़ी बीड़ी सिगरेट आदि का भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, बहुत माल बनता है श्रीनाथ द्वारे में, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, बेचते हैं बाहर। आप श्रीनाथ द्वारे के बाहर जाइए, इतने बड़े बड़े लड्डू जो बाल गोपाल को मिलते हैं, इतने बड़े लड्डू हमने देखे, कैसे इतने बड़े लड्डू, अब कहाँ वो बाल गोपाल, छोटा सा मिचनो और इतना बड़ा लड्डू, और फिर देखो तो बाहर बेच रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं, भक्त लोग लेते हैं, खरीदते हैं वो प्रसाद। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है, सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, इस प्रकार से भावना रखेंगे, उस प्रकार तो है नहीं। अब ऐसी मक्खियां आदि होंगी नहीं, अब वो जो मीठा मीठा होगा उसमें मक्खियां भी तो बैठती होंगी ना, तो सतयुग में ऐसी मक्खियां थोड़ी बैठेगी। ऐसी मक्खियां आदि होंगी नहीं जो किस चीज को खराब करे, ऐसी बीमारी आदि वहां होती नहीं। बड़े आदमियों के पास तो सफाई भी बहुत होती है, तो सतयुग में कितनी सफाई होगी, कितना सुंदर होगा वो संसार। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत अच्छी होती है, वहां तो ऐसी बातें होती नहीं जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु मच्छर मक्खियां ये सब होते ही नहीं, रोग आदि होते नहीं। ये सब बीमारियां द्वापुर से निकलती है, तो बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, तो बाबा की याद से एवर हेल्दी बन जाते हैं। जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो, आयु भी बड़ी होती है। सतयुग में 150 साल की आयु किस आधार पर हुई? अभी तो है ही नहीं, जैसे कि ना के बराबर है, तो किस आधार पर इस समय इतना योग लगाया जो भविष्य में 150 साल की आयु हुई? तो बाबा कहते हैं आयु भी बड़ी होती है, कल की बात है, इतनी बड़ी आयु थी भारतवासियों की, 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वो योगी थे और ये भोगी है, तो भोगियों की आयु तो बहुत कम होगी। वो भोगी जो होंगे वो रोगी भी होंगे, और जो योगी है वो उनकी आयु भी लंबी होती है। तो ये भोगी है, तुम हो हम योगी हैं। कौन से योगी हो, कौन से योगी है? हाँ, तुम राज योगी हो, और क्या हो? राज ऋषि हो। राज ऋषि का मतलब क्या है? राज योगी तो हो, योगी कई समझते माना हठ योगी, लेकिन राज योगी माना राज ऋषि, राजाई के लिए त्याग करते हैं, पवित्र रहते हैं राजाई के लिए। वो हठ योगी तो राजाई के लिए थोड़ी करते हैं, वो तो संन्यास मार्ग है। तो बाबा कहते तुम राज योगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु ये है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं, ये पुरुषोत्तम मास नहीं है। पुरुषोत्तम मास आता है 3-3 साल के बाद, पुरुषोत्तम दिन भी आता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी आता है। पुरुषोत्तम वर्ष माना एक एक्स्ट्रा दिन, 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो इसीलिए अभी ये ईयर लीप ईयर था, 29 दिन थे फरवरी के, नहीं तो 28 दिन होते, तो हर चौथे साल 29 दिन होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा दिन, तो एक्स्ट्रा दिन या एक्स्ट्रा मास। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग ऐसा नहीं है खाली एक दिन या एक मास या एक वर्ष, नहीं, ये है पूरा युग, पूरा युग ये पुरुषोत्तम युग है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, रोज रोज समझाते हैं, फिर क्या कहते हैं, एक बात कभी नहीं भूलना है। कौन सी बात कभी नहीं भूलो? पावन बनना है तो मुझे याद करो, मुझे याद करो, ये भूलो मत। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस जाना है, मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने, आत्मा को साफ करने आया हूं। फिर क्या होगा, जब आत्मा साफ हो जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, आत्मा शुद्ध कंचन हो जाएगी, सतो प्रधान हो जाएगी, एकदम पावन हो जाएगी, तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा, पवित्र मिलेगा। यहां तो विकार से पैदा होते हैं, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तो क्या होता है, बनना तो इस पुराने शरीर में ही है संपूर्ण पवित्र। तो आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो। संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा इस पुराने पतित शरीर में रह नहीं सकती है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा गायन है, क्या गायन है, हाँ माताएं क्या गायन है तुम्हारा, वंदे मातरम। बाबा माताओं के आगे झुकते हैं, वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाते हो, केवल धरती को पवित्र वंदे मातरम नहीं करते हैं। ये तो भारत में जब वंदे मातरम कहते हैं तो धरती माता, भारत माता, उसको वंदे मातरम कहते हैं, लेकिन है तो बाबा कहते हैं माताएं, तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो, इसलिए माताओं को भी बाबा वंदन करते हैं। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी, आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद से निकल, याद से निकाल, सच्चा सोना बनना है। दूसरा, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ, ऊंच प्राइज लेनी है तो भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है। वरदान, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। अंत में हमारी प्रत्यक्षता कैसे होगी? चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में, सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है, ये हर एक वर्णन करे, इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है, नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए, इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। उनको हमारी पवित्रता हर अंग अंग से दिखाई दे, तो बाबा कहते इसी को कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। स्लोगन, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। केवल अशुद्ध संकल्प अशुद्ध कर्म यही अकाउंट को खाली नहीं करता है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। इसीलिए व्यर्थ को समाप्त करो, अशुद्ध तो करो ही करो पर व्यर्थ को भी समाप्त करो। आज का व्यक्त इशारा 6 तारीख है, संस्कार मिलन की रास पर बाबा हर अव्यक्त इशारे में बताते हैं। 6, एक दो के स्नेही तब बनेंगे, कब बनेंगे एक दो के स्नेही, तब बनेंगे जबकि संस्कारों और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे, संस्कार भी मिलाएंगे संकल्प भी मिलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं हो, महिमा हुई तो बहुत अच्छी स्थिति बनी और किसने कुछ कह दिया फंक हो गए फीलिंग आ गई, हाँ बाबा कहते ऐसी स्थिति न हो। तो लेकिन ध्यान रहे आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं हो, नहीं तो डगमग होते रहेंगे। कई बच्चे जब कुछ करते हैं तो उसके फल की इच्छा रखते हैं, महिमा हो मेरी मेरा नाम मान शान हो, ये फल की इच्छा रखते हैं। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है, अगर कोई निंदा कर देता है तो निधन के बन जाते हैं। हाँ जैसे माँ बाप है ही नहीं उसका। अपनी स्टेज को छोड़ एक दो से किनारा कर लेते हैं, लेकिन स्तुति निंदा में समान स्थिति रहे तो संस्कार टकराएंगे नहीं। फिर अगर स्थिति नीचे आ गई तो संस्कार भी टकराएंगे, तो इसलिए दोनों में समान रहो। तो बाबा कहते हैं स्थिति तो संस्कार टकराएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे, नीचे तो बहुत जबरदस्त मीटिंग है, हाउसफुल हो गया है, 2000 से ऊपर भाई बहने आ गए, कॉन्फ्रेंस हॉल में भी इतना एक सीट खाली नहीं, इतनी भर गई कॉन्फ्रेंस, इतना भर गया है। चलो ओम शांति।